आनंद के ध्यान से आनंद मिलता है इसमें संदेह नहीं है। आनंदमय पूर्ण आनंद 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 अपार आनंद असीम आनंद चिन्मय आनंद, ऐसे जिनके साथ आप आनंद जोड़ो उनका उच्चारण करते रहो, ऐसा लगेगा जैसे कोई आनंद की बाढ़ आ रही हो। ये चार आचार जो कुछ आपको दिखता है ये परमात्मा का स्वरूप है। जब ये आनंद की बाढ़ आए तो सोचना चाहिए आनंद ही परमात्मा है, प्रसन्नता होनी चाहिए। प्रसन्नता का ध्यान करो। जिस तरह आकाश अनंत है उसी प्रकार से ब्रह्म भी अनंत है। आकाश की सीमा होती है लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं होती। एकांत में आनंद की भावना करो, वाणी से आनंद का उच्चारण करो, बुद्धि में निश्चय करो कि ये आनंद ही आनंद है। मन से मनन करो कि अपने आप को ही भूल जाओ, एक भगवान ही भगवान है। देखो परमाणु के रूप में भगवान, जल बादल के रूप में जल, बूंद के रूप में जल, बर्फ के रूप में जल, जैसे जल के अनेक रूप देखने में आते हैं फिर भी जल जल ही होता है, एक ही है। इसी प्रकार से जो कुछ दिखता है ये परमात्मा में से निकला हुआ रूप है, ये परमात्मा ही है। पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, वो भाप क्या है, वो पानी ही है। वो भाप जाकर के बदल बनता है तो बदल क्या है, वो पानी ही है। और फिर वो बरसता है तो वो पानी है। तो एक पानी का अनेक रूप होता है, ऐसे सब परमात्मा का ही तो रूप है। सत्संग से वैराग्य से उपरामता से और भगवान का जप करने से और आनंद की बार बार आवृत्ति करने से ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। वैराग्य सत्संग उपरति और नाम जप ये बहुत काम की चीज है। ध्यान से बता रहे हैं बात, ये बहुत काम की चीज है। जिस जिस चीज में राग का अभाव होता है वहां वैराग्य और उपरामता अपने आप आ जाती है। जैसे किसी का मांस मदिरा में राग नहीं है तो वह उससे कैसा उपराम हुआ हुआ है, ऐसे विषयों से उपराम हो सकते हैं। एकांत में बैठकर नाम जप करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु का स्वरूप आनंदमय है। खूब विचार करके देखो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ये जो हमको संसार में सुख मिलता है ये आनंद का एक विकृत रूप है, इससे बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे बर्फ का ढेला होता है उसको गंगा जी में प्रवेश करा दो तो बर्फ के चारों ओर गंगा जी है और बर्फ का ढेला भी जल ही है, ऐसे ही शरीर को बर्फ के ढेले के समान समझो और परमात्मा को जल के समान समझो। परमात्मा में ये बर्फ का ढेला है। आकाश निराकार है, बादल साकार है, बादल के अंदर भीतर बाहर आकाश ही आकाश है। ऐसे हमारे अंदर बाहर जो कुछ है सो परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा जिसके मन में भाव दृढ़ता से हो जाता है वो कभी अपने को परमात्मा से अलग नहीं मानता है, चाहे उस पर कितना ही कष्ट आ जाए वो कष्ट को भी परमात्मा का रूप ही समझता है। ये जीवन मुक्ति की परीक्षा होती है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। चित्रकूट का प्रसंग है। जनक जी महाराज चित्रकूट आए हैं। क्यों आए? चित्रकूट जनक जी महाराज भरत जी का प्रेम जानने के लिए आए। ज्ञानी को प्रेम तत्व की इच्छा रहती है, प्रेमी को ज्ञान की अलग से इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवान प्रेमी को ज्ञान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। जो भगवान से प्रेम करता है उसको भगवान ज्ञान दे देते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको भगवान प्रेम दे देते हैं क्या? कि प्रेम देते नहीं है, क्योंकि प्रेम की रीत कुछ और है। प्रेम तो भगवान को देने से वो प्रेम बड़ा होकर हमारे पास आता है। जैसे गेंद है, उसको हम भींत पर जितने वेग से मारेंगे उतनी वेग से गेंद आएगी, धीरे सी गेंद को फेंकेंगे धीरे सी वापिस आएगी, तेज गेंद को फेंकेंगे टक्कर खा करके हम जहां खड़े हैं जहां से गेंद फेंकते हैं उससे और पीछे और आगे जाएगी। ऐसे ही भगवान में प्रेम करने पर हमारा ही प्रेम दुगुना चौगुना होकर के वापस लौट कर आता है। तो हमारे महाराज जनक जी विदेह हैं, ज्ञानी हैं, उनको प्रेम की आवश्यकता थी, आते हुए प्रेम के लिए चित्रकूट आए। आए और भरत जी के विषय में सुना, सुनैना जी को भरत जी की कथा सुनाई। कथा सुनाते सुनाते उनको रात का पता ही नहीं चला, पूरी रात कथा में बीत गई। भगवान की कथा में जो आनंद आता है, रस मिलता है, उसको वे ही जान पाते हैं जो उस रस में डूबे हुए हैं। एक बार सेठ जी गोरखपुर में सत्संग की बातें करने के लिए बैठे थे। थोड़ी देर बैठे बैठे करते करते अच्छे अच्छे श्रद्धालु सत्संगी लोग उनके बीच में सगुण के साकार की ऐसी बातें चली, चलते चलते सेठ जी की पूरी रात बीत गई। महाराज जी ने कहा कि मैं भी वहीं था, मेरे मन में तो आया कि इनके संध्या का समय हो गया, पर बाद में विचार किया कि संध्या की अपेक्षा ये जो अभी बात चल रही है बहुत कीमती बात है। 4 बज गए, 4 बजे बाद फिर सेठ जी का सत्संग कराने का कार्यक्रम रहता था, तो उस समय में फिर सेठ जी ने कहा कि कोई बात पूछो, तो किसी ने बात पूछ ली कि सेठ जी आप रात का जो है ये संध्या करना भूल गए थे, हमको याद दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? तो उनका कि नहीं दिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवत भाव में जब डूबता है तो वो संध्या वगैरह गौण हो जाती है। मुझे भी मालूम था कि संध्या का समय हो गया, लेकिन मैंने यही सोचा कि ये बात ठीक नहीं है, अभी इस भाव में डूबे हुए सबका भाव जमा हुआ है, इसलिए इसी में ही रहना ठीक है। तो जनक जी महाराज और सुनैना जी निशि दंपति ही इनके पलक सम बीती, पलक के समान सारी रात बीत गई थी। इधर राम जी ने गुरु जी से कहा तो गुरु जी ने कह दिया, राम जी आप अपने आश्रम में रहो, कुटिया में रहो, हम सब आपस में बात करते हैं। तो जनक जी के पास आए सीधे वशिष्ठ जी महाराज और आकर के कहने लगे, हे जनक महाराज, हम लोग तो शास्त्र का ज्ञान ज्यादा करते हैं, टीपणा पंचांग देखते हैं और ब्रह्म माया जगत का विचार ज्यादा करते हैं, आप नीति का, राजनीति का, धर्म का, इनका आप खूब विचार करते हैं, इसलिए ये एक बड़ी असमंजस की वेला है, राम जी को वन में ही रहने दें और या भरत जी को साथ में जाने दें कि या भरत जी को अयोध्या ले चले, क्या कुछ करें, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे समय में आप ही हमारी इस असमंजसता को दूर कीजिए, क्या करना चाहिए? वशिष्ठ जी महाराज के वचनों को सुनकर के जनक जी के मन में इतना अनुराग पैदा हुआ कि ओहो, भगवान का और भक्त का जो आपस में प्रेम टकरा रहा है, इसमें तो मेरा ज्ञान वैराग से वैराग्य हो गया। लखी गति ज्ञान वैराग विरागे, ज्ञान से वैराग्य से ही वैराग्य हो गया। फिर विचार करते हैं कि यहाँ हमने आया आना अच्छा नहीं किया, यहाँ आए किन भल नहीं, हमको आना नहीं चाहिए था यहाँ। अब कोबड़ छोट कहत अपराधु, किसके लिए मैं क्या कहूं? रामई राय कहेउ बन जाना। देखो, प्रेम तो दशरथ जी महाराज ने आज्ञा भी दे दी राम जी को वन में जाने की, और साथ में खुद ने भी अपना प्रयाण कर लिया, प्रेम के मारे में भी शरीर छोड़ दिए, और हमको कोई पूछेगा कि आप चित्रकूट गए थे कि गए थे, क्या किया? राम जी को वन में भेज दिया, इसीलिए गए थे? ये जो लोग ताना मारेंगे तो सही बात की, क्या करें? हम अब बनते बनई पठाई प्रमुदित, फिर अब विवेक बढ़ाई। लोगों के कहेंगे हम बड़े विवेक वाले हैं साहब, हम विदेह महाराज हैं, हम मिथिला नरेश हैं, हमने बहुत बढ़ाई का काम किया, क्या कि राम जी को वन में भेज दिया और हम जिएंगे और प्रफुल्लित होकर के रहेंगे। जनक जी महाराज का ऐसा सबने अनुराग देखा। जनक जी ने कहा कि ऐसा करें, अब भरत के पास चलते हैं, देखिए भरत क्या बोलते हैं। ठीक है, भरत के पास चलो। तो वशिष्ठ जी, जनक जी और भी अच्छे अच्छे लोग भरत जी के पास आए और भरत जी ने वहां उनका बड़े अगवानी करके स्वागत किया बिराजो महाराज। जनक जी कहने लगे, देखो बेटा भरत, अब क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको भगवान का स्वभाव मालूम है, राम जी सत्यव्रत हैं, धर्मरत हैं, शील निधान है, स्नेह के खजाने हैं, और वे आपके हमारे स्नेह के कारण से संकोच में डूबे हुए रह करके सब संकट सह लेंगे, जो कुछ अपने बात रखेंगे सब सह लेंगे, पर क्या करना चाहिए, क्या जाकर के राम जी से कहे, तुम हमको आज्ञा देओ क्या करना चाहिए। देखो जनक जी महाराज अपने जवाई साहब से बोलते हैं, छोटे जवाई साहब से, कि आप हमको आज्ञा दो। तो भरत जी तो एकदम पानी पानी हो गए वहां। भरत जी महाराज ने आंखों में पानी लेकर हाथ जोड़ करके गुरुजनों के सामने और बड़े बड़े पुरुषों के सामने, क्या बोल रहे हैं आप मेरे पूज्य पिता है और वशिष्ठ जी के समान तो कोई माँ बाप है ही नहीं, हमारे इतने बड़े पूजनीय है। और विश्वामित्र जी महाराज, ये वो विश्वामित्र जी महाराज है जिन्होंने तपस्या के द्वारा कितना बड़ा अध्यात्म बल प्राप्त किया है, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू, और आप स्वयं ज्ञान के सागर है महाराज। जनक जी, मैं एक बच्चा आपको आज्ञा दूंगा क्या? आप विचार करके देखिए महाराज, अब मैं यहां चुप रहता हूं तो ये मेरी मलिनता है, और बोलता हूं तो ये मेरा बावलापन है। यही समाज थल बूझब राउर मौन मलिन, और मैं बोलब बाउर, मैं तो दोनों तरफ से ही फंस गया, बोलूंगा तो बावड़ा कहलावे, देखो ये कल का छोकरा कुछ बोलने लगा है, और चुप रहूं अच्छा कुछ नहीं बोलना, हमारा तमाशा देखना, हमारी अकल को देखना, ऐसा कह देंगे, अब क्या करें। तो मौन मलिन में बोलब भाव, इसलिए महाराज स्वामी का धर्म और स्वार्थ साधना ये दोनों परस्पर विरोधी चीज है। मैं कहने के लिए कहूंगा राम जी मेरे स्वामी है और स्वामी के धर्म का पालन करना चाहता हूं, लेकिन अपना स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहता हूं, ये दोनों विरोधी है। बैर होता है वो अंधा होता है, प्रेम होता है वो उसको प्रेम के अंदर ज्ञान नहीं होता। इसलिए महाराज मेरा तो बोलावा कोई काम नहीं आएगा, मैं तो पराधीन हूं, राम जी का रुख क्या है वो आप मुझे बता दीजिए, और सबके सम्मति में जो बात बने प्रेम को पहचान करके मुझे बता दो, मैं तो वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। भरत जी की ये बात सुनी सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए, कितनी भरत जी ने कोमल बात कही, सत्य बात कही, अर्थ अमित अति आखर थोरे, थोड़े के अंदर उन्होंने सारी बात कह दी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भरत जी की बात को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। एक उदाहरण दे रहे हैं, कितनी बढ़िया बात हो, जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कोई आदमी अपने हाथ में कांच रखे, कांच में अपना मुख दिखता है, पर जिस हाथ में कांच है उस हाथ से वो अपने प्रतिबिंब को पकड़ सकता है क्या? मारे हाथ में कांच वे और मारो मुंडो बिंब दिखे, अब मैं मुंडा नहीं प्रतिबिंब ने पकड़ सकूं, थे कोई पकड़ सको, थारे मुंडा ने कोई पकड़ सका। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गहिन जाए अस अद्भुत बानी, ऐसे ही भरत जी की बातें कान से सुनाई दे रही है लेकिन अर्थ की दृष्टि से पकड़ में ही नहीं आ रही है। कोई कुछ नहीं बोला भरत जी के वचन भरे क्या बोले तो सब राम जी के पास आ गए। राम जी के पास आकर बैठे तो वो ऐसे लगने लगे सब शोक के अंदर जैसे कोई नई नई बरसात होती हो और मछली उस समय में कैसे लटपटाती है। कई देर पानी रहता हो ना तब तो मछली आराम से उसमें रहती है, लेकिन नया नया जल आता हो उसका स्वाद कुछ और होता है, फिर वो मछली उसमें यूं लटपटाती रहती है। ऐसे ही राम जी मिले तो एक प्रेम की बाढ़ तो आई उनके मन में दर्शनों से, पर मन उनका यूं चंचल होने लगा, क्या बोले क्या बोले क्या करें। सबसे पहले तो वशिष्ठ जी महाराज की बात लगी, फिर विदेह महाराज का जो स्नेह था वो सब लोगों ने देखा, और भरत जी महाराज का भक्तिमय रूप देखा। ये सब देख करके आकाश में देवताओं की मीटिंग हो रही थी, देवता लोग बड़े घबरा गए, अब क्या करेंगे, अब तो ये सब एक हो गए और राम जी ने भी इन पर छोड़ दिया, अब तो ये राम जी को अयोध्या ले ही जाएंगे। सबको राम प्रेम मय पेखा, पेखा माने देखा, भय अलेख सोच बस लेखा, माने देवता लोग इतने शोक में डूब गए कि अलेखा उसका कोई हिसाब ही नहीं है, बेहिसाब वे सोच में डूब गए, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो उस समय में देवराज इंद्र ने देवताओं के बीच में कहा कि कोई न कोई अपने माया करो, कपट करो, यार कोई प्रपंच करो, कोई माया फैलाओ चित्रकूट में ऐसे कि सबका उच्चाटन हो जाए, भगे यहां से। पर क्या माया करेंगे ये पता नहीं, सरस्वती को बुलाओ, उसी ने माया पहले रची थी, उसी ने पहले अयोध्या में जाकर के मंथरा को निमित्त बनाकर के कैसी बढ़िया माया रची, मंथरा के मन में बैठ गई। और कब केके का विवाह हुआ था और कब की शर्त ला करके दो वरदान एक रात में सब चौपट कर दिया, बुलाओ सरस्वती को। सरस्वती जी आई, देवता लोग इतने दिन तक तो सरस्वती जी से कुछ बोले नहीं, आज वो कहने लगे हे सरस्वती माता, हम सब देव समुदाय आपकी शरण में आए हैं, आप कोई ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे भरत की बुद्धि फिर जाए। देखो सरस्वती जी, ये आज का दिन है ना, यदि आज हमारे हाथ में आ गया तो राज हमारे हाथ में आ जाएगा, और आज यदि चला गया अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, आज है तो राज है और अभी नहीं तो कभी नहीं। पालु विबुद कुल करी छल छाया, कोई कपट की ऐसी बात करो, ऐसी माया फैलाओ, भरत की बुद्धि को फेरो, या ये जो बड़े बड़े पुरुष है इनमें से किसी की बुद्धि को फेरो, अपने लोग बच जाएंगे, नहीं तो ये रावण हमको जो है सदा के लिए तंग करेगा। सरस्वती जी बोली कि इतने दिन तक तो आपने हमको याद नहीं किया, आज आप हमको बोलते हो, आप लोग बड़े स्वार्थी हो, मैं आपसे विनय पूर्वक निवेदन करती हूँ, आप विचार करो देवराज इंद्र, आपके हजार आंख है, हजार आंख है, आपको ये नहीं दिखता है कि भरत की बुद्धि को और मैं फेर दूं? ये तो उस दिन भरत जी नहीं थे तब हमारी वहां पर माया चल पड़ी अयोध्या में, भरत जी होते तो हमारी माया वहीं समाप्त हो जाती। और चित्रकूट जैसा भगवान का ये पवित्र प्रेम का धाम और भरत जैसा प्रेमी, उसकी मैं बुद्धि को फेर दूं? आपको पता है कि नहीं देवराज इंद्र, यहां बड़े बड़े लोग बैठे हुए बुद्धि को फेरने में लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, विष्णु बैठे हुए हैं, शिव जी हैं, सब ये देखो सब देख रहे हैं इस दृश्य को कि यहां क्या चीज हो रही है। भरत का प्रेम देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी लालायित हो रहे हैं। सौ न भरत मति सकई निहारी, उनकी बुद्धि भी भरत तक नहीं पहुंच सकी, वो अभी तक भरत की बुद्धि को जान ही नहीं सके, और तुम कहते बुद्धि को फेर दो, छल कर लो, माया कर लो, तुमको मैं ही मिली क्या ऐसी बातों के अंदर फंसने वाली। चंदनी कर की चंड कर चोरी, चांदनी को कहे चंद्रमा की चांदनी को, ए चांदनी जरा सूरज की तुम चोरी कर लो। अरे चंद्रमा की चांदनी सूरज के प्रकाश में रहेगी? प्रातः काल अभी कृष्ण पक्ष है ना, सुबह तक चंद्रमा रहता है, सुबह तक सूर्योदय होता है इधर, चंद्रमा यहां, लेकिन चंद्रमा का ज्ञान ही नहीं होता। शुक्ल पक्ष आएगा तो इस समय चंद्रमा उदित हो जाएगा, पर कोई चंद्रमा का ज्ञान नहीं, कोई प्रकाश नहीं। तो चंदनी कर की चंड कर चोरी, जिसके हृदय में भगवान का निवास है हे देवराज इंद्र, उसकी बुद्धि को कोई नहीं फेर सकता। तह की तिमिर जह तरनी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जहां है वहां पर कभी अंधेरा पहुंचा, मेरे से ऐसी बात मत करना। सरस्वती वहां से सीधे ब्रह्मलोक में चली गई, ब्रह्मा जी को जाकर सब बात सुनाई। महाराज आपने मुझे इसलिए बनाया था, मैं राम जी के और भरत के प्रेम के बीच में जाकर छल करूं? ब्रह्मा जी ने कहा आपने किया तो नहीं ना, कि नहीं किया, बहुत अच्छा। इधर देवताओं की बुद्धि कैसी हो गई, जैसे रात में चकवा होता है, कुछ नहीं दिखता, चकवा ही हो, रात्रि में चकवे को दिखता ही नहीं, आप चकवे को यहां रख दो तो यहां पड़ा रहेगा, रहा उसको कुछ नहीं दिखता, ऐसे देवताओं को कुछ नहीं दिखता, उनका मन बड़ा मलिन हो गया। फिर उन्होंने एक उच्चाट बनाया, उच्चाट एक मंत्र पूर्वक उच्चाटन बनाया कि वो चीज वहां फेंक देंगे सब काम हो जाएगा। रची प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट, भय भ्रम अरति, अरति माने अप्रसन्नता, माया, ये प्रपंच उन्होंने वहां पर बनाने का पूरा मानस बनाने का, अब ये करना ही है अपने को। इधर तो ये बात थी, और इधर ये जनक जी भरत जी ये सब राम जी के पास पहुंचे, तो वहां पहुंचने पर जनक जी महाराज ने भरत जी का संवाद सुनाया, गुरु जी ने सुनाया, गुरु जी ने कि जनक जी का और भरत जी का ऐसे ऐसे संवाद हुआ है, और फिर कहा कि राम तात राम जस आयसु देहु सो सब करे मोर मते, हम सब ने निश्चय किया तुम आज्ञा दे दोगे ये काम करना है, तुम जो आज्ञा दे दोगे वो काम करेंगे हम। राम जी महाराज कहने लगे हे गुरुदेव, यहां परम धर्म के जानने वाले, राजनीति जानने वाले महाराज मिथिलेश जनक जी महाराज विराजमान है, मैं यहां कुछ आदेश दूंगा। हे गुरुदेव आप यहां विराजमान है, राउर राय रजाय सु होई राउरी सपत सही सिर सोई, देखिए मैं आपकी सौगंध खाके बोलता हूं, जो मुझे आप आदेश देंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूं। राम सपद सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत सकल विलोकत भरत मुखु बनइ नउ तरुदेत। राम जी महाराज ने जब ऐसी शपथ खा ली ना, तब उसके बाद गुरु जी तो वशिष्ठ जी की तरफ, वशिष्ठ गुरु है वो भरत जी की तरफ देखने लगे, जनक जी भरत जी की तरफ देखने लगे, सब भरत जी की तरफ देखने लगे, सभा सकुच बस भरत निहारी, भरत को देखने लगे। भरत जी ने देखा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं क्या कहूं सबके बीच में। अब राम जी ने तो कहा गुरुदेव को कि आप आज्ञा दे दो। भरत जी को देखने की क्या जरूरत थी? भरत जी कहते हैं हमारी यहां पर बुद्धि काम नहीं करती। जनक जी की तरफ, जनक जी के हमारी बुद्धि काम नहीं करती। अब भरत जी ने देखा कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो उन्होंने अपने प्रेम को संभाला है। भरत जी भी वहां विकल हो रहे थे कि अब कौन बोले राम जी के सामने, तो उन्होंने कुछ समय देख करके अपने प्रेम को कैसे संभाला, जैसे विंध्याचल पर्वत बढ़ रहा था और अगस्त जी ने रोक दिया ठहर जाए। विंध्याचल पर्वत था, यूं बढ़ता ही जा रहा, सबको खत्म कर देता वो विंध्याचल पर्वत, दक्षिण भारत को खत्म कर देता। तो अगस्त ऋषि ने रोक दिया, ठहर जाओ यहां, इन पर्वतों के पहले पांख थे, तो पांख थे उड़ते थे, तो उड़ते समय में ये कहां जाकर पड़ेंगे कुछ पता नहीं, कितने प्राणी मर जाएंगे, कितने नगर खत्म हो जाएंगे, कोई ठिकाने। अगस्त ऋषि ने कहा अरे ये विंध्याचल पर्वत तो यहां सबको नष्ट कर देगा। एक मंत्र बोल करके साप देखो ठहर जाओ यहां, तो विंध्याचल पर्वत वहीं रह गया, नहीं तो विंध्याचल पर्वत आगे जाता। भरत बिंद जिमि घटज निवारा। और बता रहे हैं कि सबका शोक है वो तो है हिरण्याक्ष, और बुद्धि है वो है पृथ्वी। तो देखो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को छीन लिया ना, ऐसे सब लोगों के मन में जो शोक था उस शोक ने लोगों की बुद्धि को पकड़ लिया। अब बोलो क्या करना है। तब भरत का जो विवेक है वो वराह भगवान के रूप में आकर उसका उद्धार करता है। ऐसे भरत जी महाराज वहां हाथ जोड़ करके क्षमा भी आज अति अनुचित मोरा, कहम वदन मृदु वचन कठोरा, सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके भरत जी महाराज बोलते हैं कि देखो आप लोगों के सामने मैं छोटे मुंह बड़ी बात कैसे बोलूं, लेकिन आज ऐसा ही दिन आ गया, मैं क्या करूं। फिर इतना कह करके चुप हो जाते हैं भरत जी। भरत जी कहता रे सरस्वती तुझे देवताओं ने बुलाया, तो देवताओं से तो रूस करके चली गई, तू मेरे मेरे बुद्धि में आकर बैठ जा। तूने पहले मंथरा की बुद्धि में आकर के जो कुछ करवाया था, अब वो मेरे से अच्छा काम करवा ले। अब ही सुमेरी शारदा सुहाई, शारदा का स्मरण किया और फिर वो सबके बीच में भरत जी महाराज अंतिम भाषण देने लगे। कहने लगे महाराज मेरा इस संसार में माँ है तो आप हो, बाप हो तो आप हो, गुरु हो तो आप हो, स्वामी हो तो आप, जो कुछ संसार के संबंध हो सकते हैं वो सब आप है। देखो ये प्रेमी भक्त की भाषा है, जो कुछ है सो आप है, प्रभु पितु मातु सुरिद गुरु स्वामी पूज्य परम प्रिय अंतर जामी, सब आप हो मेरे लिए। आप प्रणत पाल हो, शरणागत रक्षक हो, गुण ग्राहक हो, अपराधों को क्षमा करने वाले हो, आप जैसा कोई स्वामी नहीं मिलेगा और मेरे जैसा कोई स्वामी द्रोही नहीं मिलेगा, आप जैसा क्षमाशील नहीं मिलेगा और मेरे जैसा कोई अपराधी नहीं मिलेगा। इस संसार में कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, कहीं अमृत है कहीं जहर है, परंतु आपकी आज्ञा आपका आदेश सबके ऊपर चलता है, आपकी आज्ञा को कोई मेटने वाला नहीं है। ऐसा कोई देखा नहीं कोई सुना नहीं, लेकिन ये आपका भरत है जिसने आपके साथ बड़ी ढिठाई की है, और उस ढिठाई के कारण से भी इतना करते हुए भी महाराज आपने अपनी कृपा नहीं छोड़ी है। कृपा भलाई आपनी नाथ की न भल मोर, दूषण भे भूषण सरिसा सुजसु चारु चहु ओर। आपने तो महाराज मेरे दूषण को भी भूषण बना लिया। संसार में बड़ा आदमी कौन होता है जो दूसरों के दुर्गुणों में भी सद्गुण ढूंढता है। ये गुण बड़ा अच्छा है, ये गुण है साहब। सुजस चारु चहु ओर, आपने मेरा सब जगह यश बढ़ा दिया है महाराज। मैं कैसा हूं आपसे कोई छिपा हुआ नहीं। बड़ा कुटिल हूं, खल हूं, कुमति हूं, कलंकी हूं, नीच निशील निरीश निशंकी। निरीश माने निरीश्वरवादी, ऐसा हूं महाराज। लेकिन फिर भी आपने मेरे जैसे को अपनाया है। मेरे दोषों को आपने कभी देखा नहीं है, आपका स्वभाव ही नहीं है दोष देखने का। देखो ये अपने बहुत काम की है ये चीजें। ये जो भरत जी बोलते हैं ये अपने लोगों के लिए बड़ी काम की चीज है। ये अपने लिए ही बोल रहे हैं कि भगवान के पास कैसे शरण होना चाहिए। कहते हैं महाराज मैं तो इतना दोषवान हूं, फिर भी आपने हमारे लिए कल्याण की खूब बढ़िया सामग्री सजा करके दी है। मैं तो भुजा उठा करके कह सकता हूं इस संसार में आप जैसा कोई दूसरा है ही नहीं जो अपने सेवक को इतना निकट से अपने हृदय में स्थान दे सके। पशु नाचत, कोई बंदर नाचता है तो लोग पैसा किसको देते हैं? मदारी को देते हैं। अरे वाह तूने कितना अच्छा बंदर को नचाया, ले पैसा ले। तो नाचा बंदर, पैसा मिलता है मदारी को। और सुखपाठ प्रवीणा, कोई बढ़िया तोता है वेद मंत्र बोलने लग जाए, तोता यदि कोई बढ़िया साखी बोलने लग जाए, तोता यदि राम राम श्याम श्याम बोलने लग जाए तो उस तोता पालने वाले को लोग धन्यवाद, बहुत अच्छा तोता को तुमने सिखाया भाई। एक जगह एक तोता था, उसको सिखाया आओ सा राम राम सा, तोता बोलता है, सुना कानों से सुना हूं, आओ सा राम राम सा, आओ सा राम राम सा, ऐसी मीठी आवाज में बोले। तो पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा गुणगति नट पाठक आधीना। उस पशु के और उस तोते के जो गुण है वो सिखाने वाले के अधीन होते हैं। ऐसे ही महाराज आप सब प्रकार से, हम तो पशु हैं बंदर के समान हैं और हम पक्षी के समान हैं। आपने हमको सुधार लिया, आपने हमको अपना मान लिया। आपके समान कौन दूसरा कृपालु हो सकता है? पाले वृदावली बरजोर, यह आपकी वृदावली है। आप अपने स्वभाव को संभाल लिए, बड़ा अच्छा किया महाराज। अब महाराज मैं आपको क्या कह सकता हूं, इतना बड़ा समाज है और मैंने कितनी बड़ी चूक की है महाराज। यहां आकर के आपको कैसे कैसे संकोच में डाला है। आप आराम से यहां बैठे हुए थे, आप अपने वनवास के भविष्य के बारे में विचार कर रहे थे, ये चित्रकूट जैसा पावन धाम इसमें आप विराजमान थे। लेकिन मैंने कैसी झिठाई की महाराज, सारे समाज को लेकर मैं यहां आया, अपने स्वार्थ के लिए आया। आपको आते ही हमें तो निकाल देना चाहिए था, आया भरत तू मेरे पास। लेकिन आपने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया और आपने यहां तक कह दिया कि भाई तुम्हारी रुचि क्या है, तुम्हारी जो रुचि है उसके अनुसार हम करें। तो महाराज हमारी अभिनय को आपने विनय मान लिया, मेरी खोटाई को आपने सेवकाई मान ली। तो महाराज मैं भी आपके चरणों की सौगंध खाके कहता हूं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपके आज्ञा का पालन करने के समान मेरे लिए कोई ऊंचा धर्म नहीं है। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पापे देवा। हे महाराज, वो मैं प्रसाद रूप में स्वीकार कर जो आज्ञा दे आप। इतना कहकर के भरत जी महाराज रोने लगे। देखो ये पूर्ण शरणागति हुई भरत जी, एक बात भी उन्होंने अपनी नहीं रखी। भरत जी के हर वक्तव्य में निखार आया। पहले बार बोलते हैं थोड़ा और बात बोलते, दूसरी बार में बोले और बात बोलते, तीसरी बार में तो राम भगवान की महिमा में डूब गए। उनको अपने ही अपने अवगुण दिखाई दिए और पूर्ण शरणागत होके कह दिए कि अज्ञा सम्मन सुसाहिब सेवा। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा करिष्ये वचनम तवे, न तो युद्ध करने से मतलब रखा और न करने से मतलब रखा। अर्जुन यदि यूं कह देते ना कि मैं युद्ध करूंगा महाराज, तो ये शरणागत काम हुआ। पहले युद्ध नहीं करने का जो भाव था अब युद्ध करने का हो गया। युद्ध करना और न करना दोनों ही भाव है। मैं तो महाराज आप कहे वैसा करूंगा। करिष्ये वचनम तवे, कर्ण जब सामने आया तो खूब जो है बाणों से लड़ाई हो रही थी दोनों की। लड़ाई करते करते कर्ण भारी पड़ गया अर्जुन के। भगवान आए कर्ण क्या करता है, रथ तोड़ दे इसका, इसका रथ का पहिया तोड़ दे। रथ का पहिया तोड़ दिया, पहिया तोड़ दिया तो वो कर्ण जो है गिर गया। अब बाण मार इसके, तो बाण मारने लग गया। कर्ण कहने लगा ये अर्जुन क्या करते हो, तुम नियम को जानते हो फिर ऐसा पाप करते हो। जिसका शस्त्र टूट गया हो, जिसका रथ टूट गया हो, दूसरा रथ न आ जाए उससे पहले बाण चलाने का कोई तुमको अधिकार नहीं है। अर्जुन ने कहा देख मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं, मुझे तो ये आदेश दे रहे कृष्ण। ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा पाप हो रहा है आप रोक नहीं रहे हो। भगवान ने कहा कर्ण उस सभा में तुम्हें तो द्रौपदी को वेश्या कहकर के अपराध सबके बीच में किया था, वो धर्म था। कर्ण चुप हो गया। अब भगवान ने एक एक गलतियां बताई। कर्ण तुम उस पाप में शामिल क्यों होंगे, तुम्हारे जैसा पुरुष। भगवान ने सब बातें सुनाई, मारो इसको अर्जुन मारो। अर्जुन ने मार दिया उसको, कोई कुछ नहीं बोल सका। अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तवे, अर्जुन को मालूम था कि ये युद्ध के विपरीत बात है, पर मैं युद्ध थोड़ी करना है मुझे, मुझे तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, कुछ भी आज्ञा दे। ये तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, उसका मूल कारण क्या है कि हम मन के संकल्प अपने अनुकूल ही रखना चाहते हैं। माता पिता पति की आज्ञा नहीं मानने से हमारा मन भगवान में नहीं लग सकता। मन कब लगेगा भगवान में, जब हम पति के अनुकूल रहेंगे, माँ बाप के अनुकूल रहेंगे, सास ससुर के अनुकूल रहेंगे, वहां पर ये मन परमात्मा में लगेगा, तो लग ही नहीं सकता। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जनु पावे देवा। इतना कहकर के जो है भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिर के रोने लग गए, बुरी तरह से रोने लगे, बच्चे की तरह से। और भरत को ऐसे रोता देख करके सबके आंखें झरझर हो गई। मन मह सराहत भरत भायप भक्ति की महिमा घनी। ये सब हुआ तब इधर देवताओं ने भी देखा कि भाई भरत के प्रेम के सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। भरत ने अब ये नहीं कहा है कि अब आप अयोध्या चलो। भरत ने ये भी नहीं कहा है कि अब आप वन में रहो। भरत ने कुछ नहीं कहा, कहा कि मेरे लिए क्या करना है आप ये करो। देवताओं का मन फिर भी मलिन हो गया, क्या पता अब क्या करेंगे राम जी। देवताओं ने देखा कि भरत की सब महिमा कर रहे हैं और हम यदि भरत के ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे तो राम जी नाराज हो जाएंगे। तो ऊपर ऊपर से प्रसन्न करने के लिए, राम जी को राजी करने के लिए देवताओं ने फूलों की वर्षा की। तुलसीदास जी जानते थे कि भाई ये तो देवताओं के फूल मलिन है ये। भरत ही प्रशंसत विभूत बरसत सुमन मानस मलिन से, मन में थोड़ी मलिनता थी, खिन्नता थी उनसे। देखी दुखारी दीन दुसमाद नर नारी सब मघवा महामलिन मुवे मारी मंगल चहत। इंद्र है बड़ा स्वार्थी, इतने दोनों दशा दोनों समाज को दीन देख करके भी वो देखता है कि ये चाहे रोए मरे कटे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, हमारा मंगल होना चाहिए। तब क्या करा उन्होंने, अपने जो उच्चाटन था वो उच्चाटन फेंक दिया वहां। कौवे के समान आज इंद्र की वृत्ति बन गई, जैसे कौवा है वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेता है, ऐसे उसने अपने स्वार्थ के लिए ये फेंक दिया, उच्चाटन फेंक दिया। वो उच्चाटन वहां फेंका, सबके सिर पर मेला, तो सब लोग मोहित हो गए कि क्या करें, कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। चलो चलो क्या चले नहीं चले तो वही वहां जाकर के क्या कर लेंगे, यहीं बैठे। अरे यहाँ एक राम जी के कारण से बैठे तो कौन रहे हैं यहाँ, क्या मतलब है, चलो अपने घर चलो। कह नहीं थोड़े दिन बैठे, सबके मन में जावे चले जावे चले जावे चले, माने जावे रहे क्या करे, ऐसा उनके मन के अंदर छन बन रुचि छन सदन सुहाई। थोड़ी देर तक तो मन यहाँ बन में रहना चाहता है, थोड़ी देर में वो घर की आजादी है, उनका मन स्थिर नहीं रहा। राम जी महाराज ने देखा, अच्छा देवताओं की ये हालत, लखी ही हंसी कहे कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुआनु। ये इंद्र है ना, ये कुत्ते की तरह और कामांध व्यक्ति की तरह से इस समय में अपने काम बनाने में लगा हुआ है। यूं देखा यूं राम जी ने, इंद्र की करतूत है। तो ये किन के ऊपर उच्चाटन नहीं लगा, एक भरत जी पर उच्चाटन नहीं लगा, एक जनक जी पर उच्चाटन नहीं लगा। भरत जनक और मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय, छह आदमियों को छोड़ करके सबके ऊपर ही उच्चाटन लगा, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। इस दुविधा के लिए किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अपने मन की बाहुरे जाने की बात उसको कैसे कहूं, वो देखे मैं कैसे हूं, सबके मन में जाने की भी है रहने की भी है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। राम जी महाराज ये सब जान गए। इधर भरत जी की जो भक्ति है वो सबके मति के सबकी मति जंत्री माने सबकी मति को कुंठित कर दिया उसने, कुछ बोल नहीं सके, सब भरत की महिमा गाने लगे। कभी तो मिथिलेश है वाह भरत, कभी गुरु वशिष्ठ कहते हैं अरे भरत हम तो इतने दिनों से जप तप करते थे हमारे अंदर भी ऐसी बातें पैदा नहीं हुई, तुमने कितनी विचित्र बात कही। आप छोट महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मानी सकुचानी। अब भरत की भक्ति को कौन कवि कह सकता है भाई, कोई नहीं कह सकता। भरत विमल जस विमल विदु सुमति चकोर कुमार, लोगों का हृदय तो है आकाश और भरत का जो निर्मल यश है वो है चंद्रमा, और लोगों की जो बुद्धि है वो है चकोरी, चंद्रमा को चकोरी देखती रहती है। ऐसे लोगों के हृदय में भरत का जो निर्मल यश है उसको ये कवियों की बुद्धि निहार रही है, हो कैसा भरत का चरित्र है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारे जैसे आदमी कैसे ये बात कह सकते हैं। यदि भरत जी महाराज का चरित्र सामने नहीं आता तो सी राम पद हो न रथ को, सीताराम जी के चरणों में किसका प्रेम हो सकता था। सबकी ये दुविधा देख करके और फिर भगवान ने कहा देखो भरत अब तुम मेरी बात सुनो, तुम जो है लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, लोक मर्यादा को जानते हो, लौकिक व्यवहार को भी जानते हो और तुम वैदिक व्यवहार को भी जानते हो, प्रेम में बड़े प्रवीण हो। मैं क्या कहूं भरत, कर्म से, वचन से, वाणी से तुम इतने निर्मल हो कि तुम्हारे समान तुम ही हो, मुझे कोई उपमा नहीं मालूम देती। इतने आदमियों के बीच में तेरी मैं बड़ाई करता हूँ, इससे भी मुझे प्रसन्नता नहीं है, तेरी बड़ाई करने में संकोच होता है। एक बात सुनो भरत, अपने पिताजी ने दो वरदान दिए थे और वे कितने सत्य प्रतिज्ञ पिताजी थे उसको सभी लोग जानते हैं। तुमको सभी का कर्तव्य का ज्ञान है, तुमको ये भी मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यथा अवसर तुम अच्छी बुद्धि देने वालों में से हो। एक बात सुनो, पिताजी ने वरदान दिया और पिताजी आज चले गए संसार से। मुझे वन में जाने के लिए कहा, तुम्हें अयोध्या जाने के लिए कहा और पिताजी संसार से चले गए। अब उनके पीछे, ऐसे सत्य प्रतिज्ञ पिता के पीछे अपने लोग उनके वचनों को उलट पुलट कर दे रहे, बताओ भरती अच्छा थोड़ी लगता है। मैं मानता हूं कि बड़ा संकट का ये समय है, इस संकट के समय में सब प्रजावासिनियों ने अपने को साथ दिया है, गुरुजी की कृपा ने अपना साथ दिया है। हम ही सहित सब हो तो खुआरू, नहीं तो यहां बड़ा खराबा हो जाता। लेकिन ये सब मिथिलेश महाराज, जनक जी महाराज की कृपा रही है। अब देखो, तुम्हारे पर, हमारे पर बड़े बड़े पुरुष बैठे हुए, तुम्हारे सिर पर भी हाथ इन्हीं का है, हमारे ही सिर पर हाथ इन्हीं का है, तो ये जैसे आज्ञा देवे वैसा अपने कर लेवे, और तुम मुझसे भी वही काम करवाओ जिससे अपने कुल की मर्यादा रह जाए। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी, सो विचारी सही संकट उभारी। देखो, जिससे हमारा कल्याण होता हो, जिससे हमारा धर्म का निर्वाह होता हो, उसके निर्वाह में यदि भारी से भारी संकट भी आता हो तो सहन लेना चाहिए। मरने के बाद भी कीर्ति रहेगी, धर्म का यहां पर संरक्षण होगा। तुम, मैं जानता हूं तुम बहुत कोमल हो, लेकिन तुम्हें कठोर वाणी कह रहा हूं, लेकिन क्या करें, आज का समय ही ऐसा है। तुम ही विचार करो, जब कोई हमारे पर वज्रपात करे तो आदमी अपना हाथ को ही तो आड़े लाता है। कोई वज्र जो कोई पत्थर फेंके अपने पर तो हाथ ही आड़ा आता, और कौन आड़े आएगा। ओड़िया ही हाथ असनी हूं कोई घाय। इसलिए भाई तुम ही कोई, मैं ही अपने मन की बात कह सकता हूं। तो पिताजी की आज्ञा का पालन हो जाएगा तो ठीक है। ये मैं केवल अवधि भर की कठिनता है, 14 वर्ष की अवधि जो बताई है उतनी कठिनता है और नहीं है। अपने को विपत्ति बांट लेनी चाहिए, बांटी विपत्ति बांट करके 14 वर्ष के बाद मैं आई जाऊंगा, चलो अपने चलते हैं, अयोध्या आ जाएंगे, अयोध्या रहेंगे। लेकिन तब तक तुमको अयोध्या रहना चाहिए और मुझे वन में रहना चाहिए। दोनों समाज ने जब ये बात सुनी तो सब आनंद में डूब गए कि देखो भाई कुछ भी कहो, हमको हमारे स्वार्थ से नहीं सोचना है, राम जी की बात में अमृत भरा पड़ा है। वहां सरस्वती आई, सरस्वती गुप्त रूप से आकर एक एक को देखती है। अरे ये तो बड़े ज्ञानी महात्मा है, भरत जी का भाईपना देखकर बड़ा संतोष हुआ उनको। इधर लोगों को भी सब ये बात सुनने को मिली तो लोग भी बड़े आनंदित हो गए। भरत जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज नाथ भयउ सुख साथ गए को, लह उलाव जग जन्म भय को। महाराज अब तो आपके साथ जाने का मुझको बड़ा सुख मिल गया, अब तो आप हमको सहारा दे दीजिए, कोई याददाश्त दे दीजिए, कोई यादगार दे दीजिए, कोई स्मृति चिन्ह दे दीजिए, ताकि मैं उसको बार बार निहारता रहूं और ये चित्रकूट का आपका दर्शन मेरे हृदय में रहे। देखो जन्मे तो अयोध्या में, खेल कूदे अयोध्या में, लेकिन भगवान की चित्रकूट की छवि को लेना चाहते हैं। इसलिए भाई चित्रकूट की तैयारी करनी चाहिए, वहां पर भगवान का प्रेम बिखरा हुआ है, वो बटोरना चाहिए वहां का प्रेम। अवधि पार पावो जैसे ही, महाराज एक बात कहूं, बोलो। हम आपका अभिषेक करने के लिए कई जगहों का तीर्थों का जल है वो बड़े बड़े मटकों में लेकर आए हैं, तो आपका अभिषेक करने के लिए आए थे, अब तीर्थ जल का क्या करें? तो राम जी महाराज ने कहा, अच्छा तो भाई तो महाराज ऐसा करें कि यहां चित्रकूट में जगह जगह तीर्थों का जल रख दे, में कोई अच्छी जगह देख करके। वही अत्रि ऋषि बैठे हुए थे, भगवान ने कहा, अरे अरे भरत, ऐसे ऐसे पवित्र ऋषि यहां बैठे हुए हैं, ये कहे वैसा कर लो। अवश्य अत्रि आयस सिर धर्म, राम जी ने कहा ये अत्रि के आदेश से तुम ये जैसा कहे वैसा करो। तो फिर राम जी महाराज के कहने से अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम करके अत्रि ऋषि के साथ हो लिए, और राम जी और सबके सब अत्रि ऋषि के साथ वन में घूमने लगे। अब सब लोग आपस में बात क्या करते हैं, ये देखो ऐसा प्रसंग है कि उठते बैठते चलते फिरते राम जी की भरत जी की कथा हो रही। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सब भरत जी का और इनका संवाद ही कर रहे हैं। अरे देखो भरत ने कितना अच्छा कहा, दू समाज ही हर्ष विषादु, दोनों ही समाज में हर्ष भी हो रहा है और शोक भी हो रहा है। शोक तो इस बात का कि देखो इन दोनों के दर्शन अब हमसे दूर हो जाएंगे, हर्ष इस बात का कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि चित्रकूट में आए और चित्रकूट में इन दोनों का दर्शन किया। एक कहीं रघुवीर बढ़ाई और एक सराहत भरत भलाई। ऐसे चलते 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 अत्रि ऋषि ने एक कुआ बताया, कुआ, भरत ये कुआ है, इसमें बड़ा मीठा जल है, पावन पात पुण्यमय पुण्य थल रखा। तब सब वहां लाकर के तीर्थों का जल था वो वहां रखा, और फिर उस जल को देखा, जल को देखो भरत ये कुआ बहुत प्राचीन है, लोपेउ काल विदित नहीं के वो किसी को पता नहीं है, मुझे ही पता है। इस कुएं के अंदर ये तीर्थ का जल ला करके तुम डाल दो। तब उन्होंने उस तीर्थों के जल था उसमें डाल दिया। अब राम जी महाराज सब चित्रकूट में घूमने लगे। अब देखो चित्रकूट में कई जगह कांटे कंकर कुश कंटक कांकरी कुराई कटक कठोर कुवस्तु दुराई खूब चीजें थी। पृथ्वी ने देखा कि अरे हमको भरत जी महाराज डांटेंगे फटकारेंगे, तो पृथ्वी ने जितने कांटे वगैरह थे वो बटोर करके अपने अंदर छिपा लिए और कोमल कोमल बालू का वहां पर सब जगह बिछा दी पृथ्वी ने, एकदम भूमि नई की नई हो गई। महिमंजुल मृदु मारग कीने बहत समीर त्रिविध सुखलीने, सब बड़े आनंद के साथ में वहां पर चित्रकूट में घूमे। अब देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई आदमी उबासी लेते हुए भी ऐसे बोलता है उसको भी भगवान कल्याण कर देते हैं, उसका भी कल्याण कर देते हैं, सब सिद्धियां दे देते हैं। वे भगवान अपने अंदर प्रेम रखने वाला जो प्राण प्रिय भरत है उस भरत को कितनी बढ़ाई देते होंगे इसको कोई जान नहीं सकते। ये कुआ है ना, ये कुआ भरत के कुएं के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, आज भी वो भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार से सारे चित्रकूट में भरत जी महाराज घूमे। ये घूमने का अर्थ क्या था कि राम जी किस समय कहां बैठते होंगे, चित्रकूट को पूरा देख लो, अयोध्या में बैठे बैठे ध्यान करेंगे, हाँ अब इस वृक्ष के नीचे बैठने चाहिए, अब इस शिला पर रहने चाहिए, चित्रकूट को पूरे को देख लेंगे तो ध्यान में हम अच्छा साथ में रहेंगे तो एक देश में रहेंगे, ध्यान में रहेंगे तो सौर उनको क्या पता था वो सीता जी ऐसे ऐसे रावण चुरा लेगा और आगे क्या करा, कुछ नहीं। भरत जी तो केवल राम जी के प्रेम में है। अतः पूरे चित्रकूट को अच्छी तरह से देख करके 5 दिन तक सब तीर्थों में गए, घूमे फिरे और फिर संध्या का समय हुआ, सब एक जगह आकर वापिस वहां पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। कल विदा हो जाएंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम।